Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
तो त्रिलोकी गुरु भगवान शिव को तीनों लोक का एक ही गुरु है, लेकिन तीनों लोक के एक गुरु होते हुए भी हम लोग उनसे संतुष्ट न होकर, क्योंकि वह तो तीनों लोक के गुरु हैं, हमको अपना सेपरेट गुरु चाहिए, है ना? वो तो कॉमन गुरु है, साझा गुरु है। भगवान शिव तीनों लोक के जो गुरु हैं वो कैसे गुरु हैं? साझा गुरु है। तो साझे में हमारा गुजारा नहीं चलेगा, सेपरेट इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए हम गुरु बनाते घूमते रहते हैं तीनों लोक के गुरु होते हुए भी। तो भगवान शिव को त्रिलोक के गुरु, गुरु के बारे में, शिव को गुरु के बारे में हमने कल दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के माध्यम से सनत कुमारों के प्रसंग से बताया था। सौख्य उपदेशम कुरु, सुख का उपदेश करो, ये 29वें श्लोक में ये बात शंकराचार्य जी कह रहे हैं। क्योंकि आप गुरु हैं, मैं चला हूं, मैं जिज्ञासु हूं, आप ज्ञानी हैं, इसलिए मेरे मन को आप सुख का उपदेश करो, अन्यथा सुख के लिए मेरा मन भटक रहा है, सुख के लिए मेरा मन भटक रहा है, मैं समझाता हूं तो मन मानता नहीं, इसलिए आप इसको समझा दो कि सुख बाहर नहीं है, अंदर है। तो सौख्यम उपदेशम करो, सुख का उपदेश करो। तो उसी आधार पर यहां ये 30वें श्लोक में भी शंकराचार्य जी ने शिवजी को संबोधन किया, त्रिलोकी गुरु स्वामीन। केवल गुरु मात्र नहीं, वो स्वामी भी है। स्वामी शब्द का अर्थ होता है अनुशासन करने वाला। क्योंकि तीनों लोग के आप गुरु हैं, इसलिए आप अनुशासन करो, मेरे ऊपर अनुशासन करो। तीनों लोक के ऊपर अनुशासन करता है आप। पशुपति, तीसरा संबोधन है पशुपति, पशुओं के पति। पशु कौन है? तो सारे जीव मात्र पशु है, गाय भैंस इतनी पशु नहीं है। कुछ पशु होते हैं, कुछ पशु होते हैं जो जंगलों में घूमते हैं, कुछ पशु होते हैं गोठ में रहते हैं, है? गाय को गोठ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं आप लोग? गौशाला है ना, अब शाला गौशाला है ना, भोजनशाला, पाठशाला, पाकशाला, जहां भोजन पकाया जाता है तो उसको पाकशाला हो गया, है? जहां गाय रहती हैं तो गौशाला हो गया, और जहां पाठ पढ़ाया जाता है तो पाठशाला हो गया। तो ये सब शाब्दिक प्रतीक हैं, जहां जो कर्म जिस अधिकता से होती हो तो उसी को वहां शाला शब्द से कह दिया। शाला शब्द का अर्थ होता है घर, संस्कृत भाषा में घर शाला है। तो वो मूर्धन्यशाला है फिर, और जो आपको गाली देते हो तो फिर दंते सा लग जाएगा वहां। गाली देते समय वह दंते सा लगेगा, पत्नी का भाई, सीधा पत्नी का भाई नहीं कहोगे, क्या कहोगे? गुस्सा आता है आपको तो पत्नी का भाई ऐसा कहा करो, क्या कहोगे? ये शब्द क्यों? पत्नी का भाई कह दो ना, और क्या? जो पत्नी का भाई कहते हो ना, वो अर्थ क्या हुआ? साला कहोगे तो गुस्सा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा वो। पत्नी का भाई कह दो उसके सामने, बड़ा खुश हो जाएगा, वाह मुझे कितना आदर दिया है, है? अर्थ क्या है? साला। तो शब्द क्या निकला? पत्नी का भाई। वो तो क्या खुश हो जाएगा, नाराज नहीं होगा वो। किसी को भी गाली करनी हो, आज से नया शब्द प्रयोग करना, क्या कहना? पत्नी का भाई कह दो तो वो तो खुश हो जाएगा, नाराज नहीं होगा। नौकर को भी साला नहीं कहना कभी ना, नौकर तो साला तो है ही नहीं। अब नौकर साला होगा तो पत्नी का भाई होने में क्या आपत्ति है, पत्नी का भाई कहा करो। पशुपते सारे जीव, और कुछ पशु ऐसे होते हैं कि प्रेमपुरी आश्रम के कुर्सी में बैठते हैं, देखा है, प्रेमपुरी आश्रम के कुर्सी में बैठते हैं। कुछ पशु ऐसे होते हैं, वो पशु कौन है तो हम हैं। तो हम हमारा ये हम प्रेमपुरी आश्रम के कुर्सी में रहने वाले पशु को कौन पालन करता है, वही पशुपति। तो नेपाल में ज्यादा पशु होने के कारण पशुपति वहां जाकर बैठ गए लगता है, नहीं? एक ने कहा था नेपाल में शिवजी को पशुपति क्यों कहते हैं, हमने कहा कि नेपाल में ज्यादा पशु हैं इसीलिए। और नेपाल में पशु ज्यादा क्यों रहते हैं, बोले नेपाल जंगल प्रधान है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, जंगलों में पशु रहते हैं, इसीलिए पति उसको पालन करने वाला भी वहीं रहता है। तो नेपाल में पशुपतिनाथ है भगवान। तो पशुपति पशु पाशवद्दो ही पशवः पाशव पंच विधो विदुः, जो पास से बंधा हुआ होता है, रस्सी से बंधा हुआ होता है, पास से बंधा हुआ होता है, उसको पशु बोलते हैं। आप लोग बंधे हो कि नहीं है? बंधन कहां है, गले में है कि पांव में है? हमने देखा है हाथियों को कहां बांधते हैं, गले में कि पांव में? आपके पांव में बंधन है कि नहीं? देखा नहीं, कहीं भी बंधा नहीं है, फिर कहां से बंधन हो गया? और पशुओं को, कुछ गाय भैंसों को कहां बांधते हैं, गले में, तो आपके गले में भी कुछ नहीं है। सुन का सुवर्ण का चेन है लेकिन बंधा तो नहीं है, तो फिर आप पशु कहां से हो गए भाई? आप का बंधन मन में है, बंधन दृष्ट होता है, दो जगह होता है। रस्सी यदि जो दो जगह बंधी हो तो उसको बंधन कहते हैं, रस्सी एक जगह बंधी हो तो उसको बंधन नहीं कहते। एक तरफ खूंटे में एक तरफ गले में बंधा हो ना तो तब कहेंगे कि पशु बंध गया। और गले में केवल बांधा है, खूंटे में नहीं बांधा है, तो गले में लटकी हुई रस्सी से पशु बंधन में नहीं होता। तो आप कहां बंधे हैं, तो एक तरफ हृदय में बंधे हैं और दूसरी तरफ कुटुंब में बंधे हैं। एक तरफ हृदय में बंधे हैं, दूसरी तरफ घर में बंधे। घर तुम्हारा खूंटे की तरह है और हृदय तुम्हारे पशु के गले की तरह है और संबंध ये रस्सी की तरह है। तो इसी से संबंध, तुमने कहा नहीं मेरी पत्नी है, बंध गए। ये संबंध रस्सी के, जैसे रस्सी बंधन दुष्ट होता है वैसे ही संबंध भी दुष्ट होता है। दो जगह जुड़ता है संबंध, एक तरफ पत्नी में है तो दूसरी तरफ उसका संबंध पति के साथ है, तब पति पत्नी भाव संबंध होगा। एक तरफ मां में है तो दूसरी तरफ बेटे में वो संबंध, तो पिता पुत्र, माता पुत्र, जनक जननी, जननी जन्य, जन्य जननी भाव संबंध। ये संबंध दो जगह एक साथ रहता है, उसी का नाम बंधन है। मैं कभी कभी बंधन के बारे में कहा करता हूं मजाक में, तो अपने ढंग का वो है। तो आप बंधे हैं कहां? तो आप लोगों ने शादी की है कि नहीं? पक्की कर ली है शादी ना? की है, तो शादी किया है। तो शादी में सप्तपदी से पहले शादी में मंगल सुबह मुहूर्त में दो कपड़ों के गांठ लगाई जाती है ना? गठबंधन बोलते हैं ना उसको, गठबंधन। तो गांठ लगाई जाती है, दो कपड़े के टुकड़े होते हैं अलग अलग, उनके बीच में गांठ लगाकर दोनों को जोड़ा जाता है। और कपड़े का एक तरफ का छोर वधू के कंधे में होता है और दूसरे तरफ का छोर वर के कंधे में होता है, और बीच में गांठ लटकती रहती है पूरी शादी भर। देखा है कि नहीं है? खाली देखा है कि भोगा है? तो कितनी बार देखा है? अब वो जो कपड़े में गांठ है कब तक रहती है? जब तक शादी का रस्म है तब तक रहेगा ना। शादी की रस्म पूरा होने के बाद उस गांठ को खोली जाती है, वो कपड़े दोनों ऐसे ही रखा नहीं जाता है, हाँ उसको खोल दिया जाता है, गांठ खोल दिया, दो दिन के बाद, एक दिन के बाद, दो दिन के बाद, शादी की रस्म के लिए जितना समय लगे, प्राचीन समय में 3 दिन लगता था, अब आजकल तो 1-2 घंटे भी पूरा कर लेते हैं, और आजकल तो गठबंधन भी नहीं होता है, हाँ? आजकल तो गठबंधन भी नहीं होता है, मंदिर में गए माला पहना दिया हो गया, कपड़ों में गठबंधन, चंदन अक्षता सुपाड़ी रखकर जो बांधते हैं जनेऊ, वो गठबंधन होता ही नहीं है। तो मैं कहा करता हूं, गांठ लगाई थी कपड़े में और वो गांठ पर गया कहां? मन में। देख लो, कपड़े की गांठ 2 दिन के बाद खोल दी, लेकिन मन का गांठ अभी तक खुला है ने? अभी तक वो लटक रहा है कि नहीं दोनों के बीच में, ये मेरी पत्नी मैं उसका पति, ये मेरा पति मैं उसकी पत्नी, तो गांठ संबंध अभी तक है। तो वो गांठ कब तक रहेगा? मरने के बाद भी रहता है वो, हाँ वो गांठ मरने के बाद भी रहता है, मरने पर वो गांठ खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं समझ लेना। हमारा सनातन धर्म का नियम है कि वो गांठ मरने के बाद भी रहता है, हाँ। इसीलिए वार्षिक पति मर गया तो वार्षिक तर्पण पत्नी करती है, इसका मतलब वार्षिक उसके पति के नाम पर वार्षिक तर्पण करती है और कहती क्या है, आज मेरा पति का तिथि है, और ब्राह्मण को भोजन कराती है, तर्पण करती है, जौ तिल कुश लेकर हाथ में, इसका मतलब क्या हुआ, गांठ मरने के बाद भी यथावत है। हमारा धर्मशास्त्र कहता है वो गांठ खत्म होगा कब? देखो, दो उपायों से वो गांठ खत्म होता है। एक तो आप वेदांत विचार करते करते ब्राह्मी स्थिति में पहुंच जाएं, और शंकराचार्य जी जिस भाषा को बोलते हैं, नमे जन्म मृत्यु, नमे मृत्यु शंका, नमे जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, सदा मे समत्वम, न मुक्ति न बंधा। जब इस भूमिका में आप पहुंचते हो तब जाकर वो गांठ खत्म हो जाता है। तो दो प्रकार के माने, एक तो ज्ञानाग्नि से वो गांठ खत्म हो जाएगा, तुम्हारे हृदय में जो गांठ पड़ी है, समझे नहीं? यदि तुम वेदांत विचार करके आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिए और उस भूमिका में पहुंच गए, मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूं, तब फिर वो गांठ खत्म हो गया, चिदानंद रूप शिवोहम, तो फिर वो गांठ खत्म हो गया उस ज्ञान की भूमिका में पहुंचने पर। अन्यथा फिर वैदिक विधि से जो सन्यास दीक्षा होता है, जैसे हम लोगों ने सन्यास दीक्षा ली है वैदिक विधि से, बिरिजा हवन करके आत्मश्राद्ध तक कर दिया, अष्टश्राद्ध, नांदी श्राद्ध और आत्मश्राद्ध, अष्टश्राद्ध नांदी श्राद्ध तो आप लोग भी करते रहते हो, लेकिन आप लोग आत्मश्राद्ध नहीं करते हो, और आत्मश्राद्ध न करने के कारण वो गांठ यथावत रहता है। और जब सन्यास दीक्षा में आत्मश्राद्ध करा दी जाती है तो आत्मश्राद्ध के बाद जब विरिजा हवन होता है और जब प्रेस मंत्र होता है, सन्यास दीक्षा में ये 3 अंग महत्वपूर्ण है, आत्मश्राद्ध, विरिजा हवन और प्रेस मंत्र श्रवण, तो उस समय प्रतिज्ञा कराई जाती है प्रेस मंत्र के पश्चात, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं, ये प्रतिज्ञा कराई जाती है, तब वो सन्यासी का संबंध खत्म हो जाता है, तब वो गांठ खत्म हो जाता है। फिर वो तर्पण की जरूरत नहीं, पिंड पानी की जरूरत नहीं, फिर पितृ कार्य की कोई आवश्यकता नहीं, देव कार्य की आवश्यकता नहीं, शास्त्र उसको अनुशासन नहीं कर सकते। जब तक विरजा हवन किया है तब शास्त्र उसको अनुशासित नहीं कर सकते, और विरजा हवन नहीं करता है, प्रेस मंत्र श्रवण नहीं किया है तो शास्त्र उसको अनुशासित करेंगे। और गृहस्थ वार्षिक श्राद्ध और महालय श्राद्ध तर्पण, साल में ये दो तर्पण दो श्राद्ध नहीं करता है तो पितृ दोष लगता है। तो साल में दो श्राद्ध अनिवार्य करना ही पड़ता है गृहस्थी को। महालय श्राद्ध माने 16 श्राद्ध जो आते हैं नवरात्रि से पहले, श्राद्ध पक्ष ही कहते हैं, तो वह जो तिथि है उस तिथि के दिन श्राद्ध करो महालय श्राद्ध, और वार्षिक तिथि जो आती है वो वार्षिक श्राद्ध। गृहस्थी को अनुशासन है, मरने के बाद भी वो गांठ नहीं फूकती, गांठ बंदी कहां रहता है, वो गांठ तो हृदय में पड़ा रहता है क्योंकि वो भावना हृदय में ही है। तो है पशु पाशबद्धो ही पशवा, इसी का नाम पशु है। मैं फलाना का बेटा, मैं फलाना का बाप, मैं फलाना की पत्नी, मैं फलाना को पति इत्यादि, उसके अंदर जो भावना है वही उसका क्या है, पास है। उसी से वो बना हुआ है। पाशवद्दो ही पशवा पाश पंचविधा, पांच प्रकार के पासों से जीवात्मा हमेशा बंधा रहता है। और इसीलिए भगवान शिव उन पासों से बंधे हुए जीव के पालन पोषण में सदा तत्पर रहते हैं। इसलिए वो पशुपति पालन पोषण और संरक्षण रक्षा में भी भगवान श्री कृष्ण क्या हुए, पशुपति हुए कि नहीं? वृंदावन में जो गाय हैं उनको चराया, इसका मतलब क्या हुआ, पशुपति हो गए। वो पशुपति हुए बिना कृष्ण गाय चरा सकते हैं? गाय पशु हैं, उनको चराया पशुपति, अब उसकी रक्षा करके ले आए, रोज इधर उधर भटकते थे उनको लेके फिर घर में आते थे, दोबारा दूसरे दिन फिर उनको लेके चले जाते थे चराने के लिए, फिर शाम को लेके आते थे, और एक बार जब भोजन करने लग गए तो गाय दूर चली गई और ब्रह्मा जी उसका अपहरण करके ले गए, तो खोजने में इतनी परेशानी हुई कि खोज खोज कर थक गए, और गाय खोजने चले गए तो इधर ग्वाल वाला भी गायब हो गए, क्योंकि जैसे गाय पशु है वैसे ग्वाल वाला भी पशु है, जीव है। तो भगवान ने विचार किया कि कहां गए, तो देखा तो ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा मेरे पशुपति, ये कैसे रक्षा करता है पशुओं की जीवों की, जरा देखें तो सही। हमने कहा कि जा, बनाया हमने, और जब इनको पहले बनाया था तो अभी भी हमारी बनाने की क्षमता में कोई कमी नहीं आई है। तो उन्होंने फिर एक हम बहुत श्यामा दोबारे संकल्प कर दी, तो ग्वाल वाले और गाय सब तैयार हो गए। ब्रह्मा देखता रह गया, अरे वास्तव में ये परमात्मा है, तो आके प्रार्थना की। ये तो भागवत का प्रसंग आप लोगों ने सुना है कई बार, तो संदर्भ ये पशुपति संबोधन है। हे पशुपते, हम जीव पशु हैं, आप हमारे पति हैं, स्वामी हैं, पालन करता है। पतनात्पाति इति पति, उन मार्गगामी हो तो उसकी रक्षा करे, पतन होने से बचावे उसका नाम पति, पाले सो पति, रक्षा करे जो पति। लगातार तीन संबोधन है इस श्लोक में, त्रिलोकी गुरु, स्वामीन और पशुपते। शुश्रूषाम करवाणी ते, मेरी इच्छा है कि मैं आपकी सेवा करूं। शुश्रूषा, शुश्रू का अर्थ होता है सेवा। हम शब्द प्रयोग करते हुए कहते हैं ना, दोनों को एक साथ कहते हैं सेवा शुश्रूषा, सेवा के साथ शुश्रूषा करते हैं। सेवा शुश्रूषा पाय, सेवा का ही अर्थ शुश्रूषा, शुश्रू का ही अर्थ सेवा। शुश्रूषाम करवाणी ते, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं। करवाणी मैं करना, ते माने तुम्हारे, सेवा शुश्रूषाम करवाणी, लेकिन करूं क्या आपकी, मैं करूं क्या, कौन सी सेवा करूं? कपड़ा धोने की बात है सेवा में, तो वस्त्र धोना भी तो सेवा के अंतर्गत है कि नहीं? कपड़े धोने की सेवा हो सकती है, लेकिन मैंने देखा वो काम तो सूर्य ने ले लिया है। कपड़ा धोने की सेवा किसने ले ली? कैसी सेवा? तो कपड़ा धोता है भाई सूर्य मैंने शायद कल संकेत किया था भगवान शिव के जब उनको कपड़े की आवश्यकता पड़ती है ना, नया कपड़ा पहनने की इच्छा होती है ना आप लोगों की, होती है कि नहीं? हम लोग बचपन में छोटे थे और गांव में पैदा हुआ ये शरीर है, तो आप लोग तो बंबई में पैदा हुए होंगे, धनिक के घर में पैदा हुए होंगे, सब साधनों से संपन्न घर में पूर्व जन्म के योग भ्रष्ट रहे होंगे है, तो साधन संपन्न घर में पैदा हुए होंगे, तो ये अवस्था आपकी नहीं रही होगी। अब ये शरीर तो ऐसे घर में पैदा हुआ बेचारा, कोई साधन स्रोत था नहीं, गांव में खर घास की झोपड़ी में है पैदा हुआ, तो गरीब, तो कपड़े पहनने की, नया कपड़ा पहनने की इच्छा होती थी बचपन में। तो अभी तो इतने कपड़े आते हैं कि पूछो नहीं है, जो भी कहता महाराज आपको कपड़ा ला के दूं, कहते हैं अरे भाई क्या कपड़ा पहने, कितना कपड़ा पहनेंगे बोलो, आप लोगों को पूछता है कोई कपड़ा ला के दूं? कोई पूछता है? हमको पूछते रहते हैं, हैरान करते हैं है? तो क्या कपड़ा पहनेंगे? तो उस समय मन में बड़ी इच्छा होती थी कि कोई नया नया कपड़ा पहने, उसके लिए फिर कोई पर्व की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, दशहरे की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, दिवाली की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, श्रावणी के रक्षाबंधन की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, तो विशेष विशेष पर्वों में ही तब नया कपड़ा पहनने को मिलता था। तो जब मां नया कपड़ा लाकर पहना देती थी तो क्या प्रसन्नता, क्या आनंद, उस कपड़े को दिखाने के लिए एक बार सारे गांव में घूम लेते थे सच्ची बात कह रहा हूं, मन स्थिति है, बचपन की भावना, बचपन की दृष्टि है, पूरे गांव में घूमते थे, सब लोग जब पूछ लेते थे अरे तूने तो नया कपड़ा पहन लिया, वाह क्या सुंदर कपड़ा है, तब फिर क्या प्रसन्नता होती थी, और पूरे गांव घुमा किसी ने नहीं पूछा तो इतना दुख होता था है? इतना दुख होता था, जीव का स्वभाव है भाई, अब ऐसा नहीं होता है, समझदारी आ गई ना, वो तो अज्ञान की अवस्था थी। तो भगवान शिव को भी कभी कभी नया कपड़ा पहनने की इच्छा होती है, तो कहां से लाते हैं नया कपड़ा बोलो?